ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कान झांसी में प्रातः भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के बारहवें अध्याय अघास और उद्धार के अंतर्गत आज 39वें श्लोक का पाठ करेंगे। आइए सुखदेव महाराज के मुख से परीक्षित महाराज के माध्यम से विश्व कल्याण के लिए अद्भुत भगवान श्री कृष्ण में मन को लगाने का सौभाग्य जिनको प्राप्त होता है उनकी महिमा का वर्णन है। तो श्लोक का पाठ कीजिए।
सकद यद अंग प्रतिमांत्र आहिता मनोमयि भगवतिं ददौ गतिं। स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्योद्यस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। सकृद् यदंग प्रतिमांत्र आहिता मनोमयि भगवतिं ददौ गतिं। स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। सकृद् यदंग प्रतिमांत्र आहिता मनो मयि भागवतिं ददौ गतिं स एव नित्यात्मसुखानुभूत्याभि व्युद्यस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः
सकृद्यदङ्ग प्रतिमान्तराहिता
न्याहिताः
मयि भागवतिं ददौ गतिम्
मनो मयि भागवतिं ददो गति
सैव नित्यात्मसुखानुभूत्यवे
सैवात्मभूत्यवायवे
व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः
मनो मयि भगवतिं गतो सैव मायां सुखानुभूतिभिः विमस्तमायान्तर्गतो हि किं पुनः। सो इस श्लोक के शब्दों के अर्थ को रसास्वादन करेंगे। सकृत का मतलब हुई केवल एक बार, सकृदेव पन पन पर पना, ये रामचंद्र कहते हैं। एक बार कोई कह दे कि मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं मैं उसको सब प्राणियों से अभेदान देता हूं, यहां तक कि मुझसे भी उसको कोई भय नहीं होता। ये मेरा व्रत है, ये मेरा वचन है। सकृत का मतलब एक बार, मात्र एक बात। सकृत यद अंग प्रतिमा, अंग प्रतिमा का मतलब भगवान का स्वरूप, भगवान की का विग्रह, मूर्ति, जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो सुंदर मनोहर मूर्ति है। सकृद यद अगर अंग प्रतिमा अंत अंतरहित, प्रतिमा अंतरहित, अंतरहित का अंदर अगर मन में प्रकट हो जाए, मात्र केवल एक बार भगवान की सुंदर छवि, ठाकुर जी का दिव्य विग्रह अगर मन के भीतर प्रवेश कर जाए। बोला कैसे? मनोमयी। मनोमयी का मतलब है कि अपने आप हो या बलात् प्रवेश कराया जाए। मनोमयी का श्रील प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है भगवान का स्वरूप। पहले अंग प्रतिमा मतलब भगवान का स्वरूप, और फिर एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वैसे रूप अनेक हैं किंतु कृष्ण आदि रूप है। क्योंकि यहां जो प्रसंग चल रहा है भगवान श्री कृष्ण की लीला का है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अंग प्रतिमा का अर्थ लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। वैसे वो आदि स्वरूप है, वैसे भी कोई भी भगवान का विष्णु तत्व अथवा अवतार का कोई भी रूप, पर तो यहां प्रसंग कृष्ण का है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वैसे भगवान का स्वरूप। वैसे तो भगवान के अनेक रूप हैं, पर तो आदि रूप श्री कृष्ण है। अंतहिता अपने अंदर में रखते हुए हृदय में भगवान के रूप को धारण किया जाए। मनह मई बलपूर्वक उनका चिंतन करते हुए, मनोमयी का मतलब ऐसे मन क्या है बाहर भागता रहता है, उसको कैसे भी थोड़ी देर के लिए एक बार मात्र भगवान को हृदय में बसा लिया जाए। भगवतीम ददाओ गतिम, तो भगवान उसको क्या देते हैं? भगवतीम। भगवतीम का मतलब जो भागवत पुरुषों को, गतिम का मतलब जो उनको गति प्राप्त होती है वो भगवान दे देते हैं। ऐसे उदाहरण अघासुर का है। बस अघासुर ने पहले तो भगवान का कोई ध्यान कर नहीं किया, पूजा नहीं की थी, नहीं कोई चिंतन कर रहा था, लेकिन बस जब आया तो ऐसे आंख टिका के देखा कि ये मेरे है, बस ये मेरे अंदर आ जाए। वो ऐसा जो उसका एक बार भाव आ गया, तो बस एक बार भी अपने मन में बलात् किसी कारणवश भी अगर भगवान की दिव्य छवि को अंतर्हित करे, मन में विराजमान करे, तो भगवान उसको देते हैं, ददाओ देते हैं। देते हैं का मतलब वो मांगता नहीं है, अपने आप देते हैं। ददामी, ददामी का भाव ये होता है, आपने देखा है कभी बच्चे बच्चे को कोई कोई चीज देता है ना, तो वो ना ना करता है। तो जब ना ना करता है, जिसको देनी होती है वो जबरदस्ती देता है। तो ददाओ का मतलब है आप ना ना करो तो भी दे देगा। तो ददाओ का मतलब है, अभी अघासुर थोड़ी मांगने आया था कि मुझे वैकुंठ दो, तो भगवान ने जबरदस्ती उसको वैकुंठ में भेज दिया। वो तो परेशान था कि वहां कहां भेज रहे हो, मेरे सारे साथी कंस के यहां रखे हुए तो जबरदस्ती भेज दिया। तो ददाओ का मतलब है कि आप नहीं चाहो तो भी भगवान पकड़ के लेके चले जाते हैं। ददाओ, ददाओ का मतलब है दे देते हैं, नहीं मांगो तो भी दे देते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात यह है, असल में एक छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ दुकान में चला गया, चाचा का दुकान था, तो काका ने दो टाफी दे दी, बोला ये ले लो। बोला नहीं लूंगा, बहुत प्रयास किया, नहीं लूंगा बोला। माँ खुश हो गई कि बच्चा चलो लालची नहीं है, नहीं लेता है। जब जाने का समय आया तो काका ने मुट्ठी भर के टाफी दी, तो बच्चे ने दोनों हाथों से ले ली। तो माँ को आश्चर्य लगा, पहले तो ले नहीं रहा, अभी ले लिया। तो पूछ लिया काके ने कि बेटा पहले तुमको मैं कह रहा था एक ले लो, ले नहीं रहे थे, अभी सब ले ली। बोला मैं मेरे हाथ से लेता तो एक दो उठा लेता, अगर आपने अपने हाथ से दिए तो मुट्ठी भर के दिए ना, तो मैं मूर्ख हूं कि अपने हाथ से मांग लूं। जो आप दोगे तो कितना दोगे उसका कोई हिसाब लगाया जा सकता है क्या? हम मांगेंगे तो क्या भगवान से मांग सकते, लेकिन भगवान जब देने के ऊपर आते हैं तो उनका हाथ कितना बड़ा है, उनका हाथ तो हजार हाथ है। वो जब देने आता है तो कौन उसको, तो फिर कौन ले सकता है उसको? तो ये है कि भगवान जब देते हैं तो वो तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उनका देने का वो तो अपने, किसी गरीब की बच्ची का विवाह कराना था तो बहुत बड़े धनी के मन में आया विवाह कराऊं। अब धनी विवाह कराएगा तो अपने स्तर के ऊपर कराएगा, गरीब के स्तर का तो नहीं कराएगा ना। तो उसने तो वैसा ही विवाह कराना है जैसा अपनी बेटी का कराता है। तो भगवान जब किसी को देंगे तो अपने ही इस अनुरूप देंगे ना, वो संसार के अनुरूप तो नहीं देंगे। तो भगवान जब किसी को देते हैं तो अपना धाम देते हैं, संसार तो नहीं देंगे। दुनिया वाला देगा एक कमरे वाला मकान दे देगा, भगवान तो अपना धाम दे देते हैं। ये ददाओ का भाव ये है कि आप नहीं उसके योग्य हो फिर भी दे देते हैं। ये भगवान की कृपा करुणा है असल में, क्योंकि उनके पास है ही वो देने को, उससे अलावा वो क्या दे सकते हैं। तो भगवान एक बार केवल कोई मात्र भगवान के दिव्य इस मुरली मनोहर इस श्याम सुंदर त्रिभंग को मन में धारण कर ले, चाहे बलात् कर ले, तो भी भगवान उसको भगवतीम गति देते हैं। स एव, फिर क्या कहना, निस्संदेह नित्य आत्म सुखाय, फिर उनका क्या कहना, नित्य आत्म सुखाय। नित्य सदैव, नित्य सबको आता है, आत्म सारे जीवों का, क्योंकि हम सब भगवान के, हम सब तेरी आत्मा हे पूर्ण परमात्मा, पापों का करो खात्मा, ये गाते थे संत पहले जमाने में, हम सब तेरी आत्मा हे पूर्ण परमात्मा। तो यहां आत्मा का अर्थ ये लिखा है कि हम सब जीव भगवान की आत्मा है, हम उनके अंश है ना। ये पहले गाते थे संत ना,
हे पूर्ण परमात्मा पापों का करो खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। ये सद्भावना का लोग गाते थे, तो ये जो आत्मा शब्द है ये हम सब आपकी आत्मा ना, और पहले से आया नित्य आत्मा, जिसका मतलब हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले था अभी नहीं है बाद में होगा, ऐसे नहीं, हमारा नित्य है। अभी हम भूल गए हैं लेकिन भगवान की ओर से तो नित्य है, उन्होंने हमारा साथ तो छोड़ा है नहीं, वो तो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमारे साथ विराजमान है, हमने उनको भुला दिया, ये हमारी गलती है। तो नित्य आत्म सुखाय सुख अनुभूति, आत्म सुख अनुभूति शब्द क्या है, आत्म सुखानुभूति, सुखानुभूत्य सुखानुभूति सुख की अनुभूति, उनके चिंतन मात्र से दिव्य आनंद प्राप्त होता है। भगवान का कोई स्मरण करे, चिंतन करे, चिंतन मन से होता है, स्मरण करते हैं तो जबान से गा गा के करते हैं स्मरण। ये माला का नाम है सुमरणी, असल में ये माला जपते हैं ना, ये सुमरण है, इसको शास्त्र में सुमरण माना जाता है, क्योंकि माला को सुमरणी बोलते हैं, जिसके ऊपर भगवान के नाम का सुमरण किया जाए। तो ये सुमरण मात्र से, चिंतन मात्र से सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। भाई सुख कैसे किसी को मिलेगा, दुख का कारण क्या है, भगवान की विस्मृति। अनादिकाल जीव कृष्ण मा बाहर मुख अतेव माया देता संसार दुख, ये चेतन चैतन्यमृत का सिद्धांत है। अनादिकाल जीव कृष्ण बाहर मुख, जीव भगवान का नित्य अंश होते हुए भी भगवान के उन्मुख होने के बजाय संसार के उन्मुख है, तो भगवान से बाहर मुख है। अतेव इसलिए माया देता संसार सुख, इसलिए माया उसको संसार का दुख दे रही है। तो इसका अर्थ यह कि माया किसी को दुख नहीं देती है, जब कोई भगवान को भूलता है तो अपने आप माया की गोद में गिरता है। ऐसे राम जी की शिक्षा में लक्ष्मण जी को चित्रकूट में, न चित्रकूट नहीं, पंचवटी में शिक्षा देते हुए लक्ष्मण जी ने पूछा है कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, माया क्या है, आपको कैसे सुख सरलता से प्राप्त किया जाए, ये बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो वहां माया के प्रसंग में लिखा है कि माया किसी को नहीं पकड़ती, जीव माया को पकड़ लेता है। उदाहरण दिया है कि बंदर को जब पकड़ने के लिए जाता है मदारी, तो एक छोटे मुंह वाली जो सुराई होती है उसके अंदर कुछ चने डाल देता है, बंदर देख के हाथ अंदर डालता है, चने की मुट्ठी भरता है, तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है, बाहर निकलती नहीं है, फिर चिल्लाता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसी ने पकड़ा है क्या बंदर को, नहीं पकड़ा है, और अभी मुट्ठी से चने छोड़ के निकल जाए तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब वो पकड़ो, तब तक मदारी आके गले में रस्सी डाल देगा, तब तो वो मुट्ठी के चने भी छोड़ देगा, फिर उसको गली गली में नचाएगा, नाचो नाचो बाबू को हाथ ऊपर उठा के राम राम करो। अब वो जगह जगह जीव नाच रहा है, माया ने गले में रस्सी क्यों डाली है, क्योंकि वो खुद ने माया को पकड़ा है, उसने किसी ने उसको पकड़ा नहीं, उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया। दूसरा उदाहरण देते हैं, तोते को कैसे पकड़ते हैं शिकारी, दो ऐसे खंभे लगाते हैं, उसके ऊपर एक नाली लगाए, उसके ऊपर पोपली नाली रख देते हैं। पोपली नाली का मतलब जैसे वो पीने के लिए ना नारियल पीते हैं, जूस पीते हैं ना ऐसी, तो आगे कुछ दाने डालते हैं, तो तोता इस नाली के ऊपर बैठता है और दाने के लिए जैसे मुख नीचे करता है, नाली घूम जाती है तो उल्टा हो जाता है। अब उल्टा हो जाता है तो पांव से पकड़ के नाली को बैठता है, कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी किसी ने पकड़ा है तोते को, हाँ कोई नहीं पकड़ा है, ऐसे करे और उड़ जाए, और ऐसे करेगा नहीं, पकड़ के जोर से बैठेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तब तक आया कि शिकारी पकड़ लेगा और पिंजरे में डालेगा, अब मिठू मिर्ची खाएगा, खाए आम खाने वाला अब बेचारा अंदर फंस गया, किसी ने पकड़ा है उसको। तीसरा उदाहरण दिया रेशम के कीड़े का, ये उदाहरण है कि जीव ऐसे तीनों गुणों के, ये तीन गुण हैं,
ये तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, तीनों गुणों के बंधन में आके उल्टा लटक के मां के गर्भ में पड़ा होता है उल्टा, ये उसका उदाहरण है। तीसरा उदाहरण दिया कि रेशम का कीड़ा जब रेशम बनाता है तो उसी में फंस जाता है, और जो व्यापारी उस रेशम को लाए और उबलते पानी में डालते हैं और कीड़ा मर जाता है, रेशम बेच के पैसा व्यापारी कमाता है, बनाने वाला कीड़ा जल के मर गया। ऐसे आप सब लोग जो बैठे कमा कमा के पैसा इकट्ठा करते हैं और अंत समय बच्चे उठा के जाके अग्नि संस्कार करके सब माल खा जाते सबका ही एक सब 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 समय एक समय में सब चला जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। तो ये सब माया सबको दुख, कौन भगवान के चिंतन कर से करने से एकदम सुख मिलेगा तो दुख का कारण क्या है? तब कहते हैं माया दुख देती है, उसको भगवान क्या करते हैं? सुख अनुभूति होती है। अभिव्यद्युस्त माया, वो जो अभी आखिरी वाला अभी लगेगा माया, अभिव्यद्युस्त माया का अर्थ है उनके चिंतन मात्र से सुख मिलता है। क्योंकि सुख क्यों मिलता है तो उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि वे सारे मोह को दूर कर देते हैं। जो माया ने हमको अभिव्यस्त माया का मतलब माया के चुंगल से निकाल लेते हैं, माया के चक्कर से निकाल लेते हैं, माया के प्रभाव से निकाल लेते हैं, इसलिए सुख की अनुभूति होती। एक संसार का सुख जो है ना वो दुख के अभाव का नाम है सुख संसार में। जब दुख कम किया जाता है उसको सुख कहते हैं संसार में। अब सर्दी आ गई है, एक अच्छा स्वेटर आ गया तो हम सुखी हो गए, तो इससे कोई दुख नहीं गया, हमने दुख को कम करने का साधन किया, उसका नाम सुख रखा है। लेकिन यहां जो सुख है वो दुख को जड़ से भगवान निकाल देते हैं, माया के बंधन से ही मुक्त कर देते हैं। इसका मतलब भगवान के चिंतन से जीव माया के बंधन से मुक्त हो गया। अभी व्यद्यस्त माया, क्योंकि वे सारे मोह को दूर कर देते हैं। अंतःगत, हृदय के भीतर सदैव स्थित रहने वाले। अब यहां प्रश्न उठता है वो भगवान कहां से उसके दुख की निवृत्ति करते हैं, कहां से? बाहर से आते हुए दिखते तो नहीं है। बोला वो सबके हृदय में तो पहले ही बैठे हैं। अब जो अंधकार माया, माया क्या करती है? अविद्या। माया का एक नाम है अविद्या, और माया का काम क्या है? दो काम है माया का। एक कहते हैं आवरण, आत्मिक आवरण कहते हैं ढक को, कुछ चीज को ढक दे, और दूसरा होता है विक्षेप, जो सत्य है उसको ढक देती है, जो असत्य है उसको दिखाती है। इसका उदाहरण आपको दें, अच्छा समझ में आने वाला। अभी तो आप भक्त बन गए, लेकिन पहले कभी सिनेमा देखने गए? जब आप सिनेमा के अंदर जाते हैं ना, पहले क्या करते हैं? अंधेरा। अब ना आप अपने आप को देखता हो, ना पास में बैठे हुए बेटे को देखता हो, ना पत्नी को देखता हो, अपने से क्या दूर किया कि नहीं किया, जो असली है उसको छुपा दिया। और फिर एकदम लाइट आएगी और पर्दे के ऊपर चलचित्र चलने लगेंगे। अब आप उनके देखते रहेंगे जो असली नहीं है, उसमें जो हीरो बना है वो पैसा ले रहा है और उसको कष्ट आता है, आप बैठे बैठे रो रहे हो, आपके आंखों में आंसे रहे, वो पैसा कमा रहा है, वो जो अभिनेता है वो तो कमा रहा है पैसा, और आप पैसा खर्च करके वहां रो रहे हो। ये माया का काम है। पहले तो अंधकार करके आपको अपना ही अपने को भुला देते हैं, और फिर ऐसा कुछ दिखा देते हैं सामने चलचित्र कि आप उसमें इतने मगन हो जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, पैसा खर्चा वो भूल गए पैसा दे के रो रहे मुफ्त में तो ये माया ऐसी है, ये माया का प्रभाव है। इस माया का प्रभाव हमारे अपने बंधन, इस माया से हम अपने आप छूट नहीं सकते। जो माया से मुक्त हो वही बंधन खोल सकता है। अब से 100 आदमी और सबके हाथ बंधे हुए तो कैसे दूसरे को खोलेगा? कोई एक बच्चा भी खुला है तो सबको खोल सकता है। तो ये साधु संत महात्मा गुरुजन है, ये असल में माया के बंधन से मुक्त है। ये फिर दूसरे की माया के बंधन खोले तो खोल सकते हैं, और वो भी भगवान किसी का खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, क्योंकि माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, भगवान माया से परे है। तो यहां प्रसंग ये आया कि अंतगत ही किम पुनः, हृदय के भीतर सदैव स्थित रहने वाले भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। बात ये कर रहे थे दसवें इस अध्याय भगवत गीता में भगवान अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि जो सदैव मेरा चिंतन करते रहते हैं सततम के तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो उनके लिए कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जब तम, उनके हृदय में जो अज्ञान है अविद्या है अंधकार है उसको मैं अंदर से ही परमात्मा के रूप में बैठा हूं वहीं से ज्ञान के प्रकाश के करके नाश कर देता हूं। तो बात ये कर रहे थे भगवान माया कहां से आके माया के चक्कर से हमको छुड़ाएंगे, बाहर से कहीं से नहीं आएंगे, हमारे अंदर ही परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और कल जो में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए, जब हम नाम जपते हैं तो यही नाम साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और ये हमारी जीभा के ऊपर नाच रहे हैं। जीभा जशोदा बन जाती है और कृष्ण और राम जीभा के ऊपर नाचने लगते हैं। तो ये भगवान जो हृदय में बैठे वो अंदर से ही अंधकार को नाश कर देते हैं जब कोई भगवान को हृदय मिला। वैसे भी भगवान को जो हृदय में जागृत कर रहे, वैसे तो बैठे सबके हृदय में है, लेकिन जब स्वयं चिंतन करने लगता है भगवान, एक दूसरा उदाहरण कभी देते हैं, बैठे एक ही हृदय में भगवान और जीवात्मा, एक ही हृदय में बैठे लेकिन कैसे बैठे हैं, जैसे 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा कैसा होता है, 36 कैसे लिखते हैं हिंदी में, एक का मुंह उधर एक का मुंह उधर, तो एक दूसरे को पीठ करके बैठे हुए, बैठे एक जगह लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं है। अब जब कोई साधु संत महात्मा मिलेगा तो क्या करेगा, भगवान तो वहां पहले ही बैठे हैं, अब वो हमारे को जरा ऐसे घुमा के 63 बना देगा। अब 63 कैसे लिखते हैं, एक दूसरे को मुंह सामने आ गया कि नहीं आया, वो बस सिर्फ ऐसे घुमाता है, वो संसार से हटा के ऐसे घुमा के सामने कर देता है भगवान, किसे सामने हो गए तो सूर्य उदय हो गया तो अंधकार कहां रहेगा, अंधकार तब तक है जब तक सूर्य नहीं है। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। अब जब हम भगवान के सामने आएंगे तो माया कहां रुकेगी। वैसे 7वें अध्याय पहले स्कंद भागवत में लिखा है कि माया भगवान के सामने आने से लज्जित होती है, हमेशा भगवान के पीछे खड़ी होती है। भगवान कहां खड़ी, माया कहां खड़ी होती है, भगवान के पीछे, आगे आने में उसको लज्जा आती है। इसलिए जो भगवान को पीठ देता है भगवान के पीछे चला जाता है उसको माया पकड़ लेती है। वैसे कहना तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे को ऐसे लगता है, अर्जुन क्या है पीछे बैठा था और भगवान बैठे थे सारथी आगे, इसलिए उसको माया थी पीछे, उसको वो माया का प्रभाव उसके ऊपर हो गया। इसलिए फिर अर्जुन जब भगवान से बात करने के लिए आया तब घूम के उपस्थ का मतलब घोड़े में जहां आगे डंडा होता है उस डंडे के ऊपर आके बैठा, अब भगवान के सामने आया तो सारा प्रकाश हो गया। पीछे भगवान के पीठ में माया होती है। तो हम भगवान के सामने मंदिर में खड़े होते हैं चिंता दूर होती है, बाहर जाते ही जूते ढूंढते परेशानी शुरू हो जाती है, जूतों से ही परेशानी चालू होती है, फिर घर तक पहुंचते कितनी होगी वो तो और की बात है, लेकिन जैसे मुड़ के भगवान, इसलिए पुराने जमाने के लोग वापस जाते ना भगवान को देखते जाते, पीठ नहीं देखे जाते थे। और यहां तक के हमने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखा अपने मंदिरों में, अंदर आती थी पहले तो सीधा भगवान को नहीं देती थी, एक ऐसे, अभी तो नहीं है मंदिरों में, हमारे मंदिरों में पहले एक तिलक रखा होता था और झारी में चरणामृत रख देते थे और एक शीशा रख देते, तो स्त्री पहले आती थी माता जी चरणामृत ले फिर शीशा ऐसे भगवान को दिखाती थी, उसमें भगवान को देख के उसके सामने तिलक करती थी, ऐसे करके अपना तिलक करके फिर बैठ के थोड़ी देर भगवान का चरणों से लेके ऊपर देखे, फिर बाहर जाके बाहर बैठने के लिए स्थान हुआ करता था उसके ऊपर बैठती थी, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती थी कभी कभी, अरे मैया अभी तो तुम गई है फिर क्यों आ गई, प्रसाद भूल गया क्या, नहीं नहीं, वो भगवान ने कौन सा आज वस्त्र पहना था, रंग भूल गई थी, पीला है कि नीला है। इसका अर्थ यह है कि वो जब वापस जाती थी वो भगवान के छवि को हृदय में साथ ले जाती थी, और शाम को फिर संध्या आरती में आ जाती थी। तो असल में सुबह मंगलामय के दर्शन आरती में आए तब भगवान को साथ में अपने हृदय में बिठाइए, हृदय में बिठाने की बात चल रही है। लेके घर चले जाओ, सारा दिन काम करोगे तब तक रहेगी स्मृति, शाम तक भूल जाए तो फिर वापस आ जाना संध्या आरती में, और रात को वो देख जब जाके सो जाओ तो भगवान हृदय में आपके साथ चले गए। तो ये पुराने जमाने के मंदिर में आने वाले भी इस तरीके से बहुत सावधानी से भगवान का अच्छी तरह से चिंतन करके आते थे, कौन से आज भगवान ने वस्त्र पहने हैं, कौन सा श्रृंगार है। यहां तक कि कहीं कहीं छोटे ठाकुर जी होते हैं ना तो दूरबीन ही रखी होती है, उससे भगवान के अच्छी तरह से कान में कुंडल है कि नहीं है वो तो बहुत दूरबीन ही रखी होती है। हम लोग दुबई उदा जाते हैं तो वहां क्या है, श्री नाथ जी का चित्र है वो बहुत छोटा है तो उसका श्रृंगार करते हैं, चित्र क्या है वो तो पट के अंदर चित्र है, तो दूरबीन से उसको अच्छी तरह से बैठ के देखना पड़ता है कि आज क्या ठाकुर जी को पहना है। तो ये दर्शन जो है भगवान का चिंतन करके हृदय में धारण करना है। तो यहां ही किम पुनः, तो फिर उनकी क्या, उनका क्या कहना। बात यह है कि जो एक बार बलात भी भगवान को हृदय में धारण कर ले तो उसको भगवान भगवती गति दे देते हैं, फिर जो निरंतर अपने हृदय में भगवान को विराजमान करते हैं, जिनकी मोह के बंधन भगवान काट देते हैं, वो तो सदा सुख के आनंद में ही गोता लगाते रहते हैं, उनकी क्या बात करनी। इसका सामान्य अर्थ ये होगा। अब इसका अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़ते हैं। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे कृष्ण की दया से, कृष्ण कृपा करके परम मोक्ष प्राप्त, परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। विमुक्ति शब्द है, विमुक्ति का मतलब विशेष मुक्ति, सायुज्या मुक्ति नहीं, मुक्ति का अर्थ होता है सायुज्या, भगवान के ब्रह्म में लीन को मुक्ति कहते हैं। विमुक्ति को मतलब भगवान ने अपना पार्षद बना दिया, अपने साथ रख लिया, उसका अस्तित्व विलीन नहीं हुआ ब्रह्म में, परंतु भगवान जैसा ही स्वरूप से भगवत धाम में भगवान ने उनको अपना पार्षद बना दिया। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं। ये अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, ये शब्द जो यहां लिखा है, ये जब भगवान के अवतार का प्रसंग भागवत में आता है तब लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर आवेष्ट मन अनंक दुबी। भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है वो वसुदेव के मन में प्रवेश किया, तो ये उसका उल्लेख है कि भगवान भगवत के मन में, प्रबल मन में ही क्यों प्रवेश किया। तो भक्ति रसायन शास्त्र में हरिशोरी जी ने लिखा है कि लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन को पिंजरे में बंद कर दो, मन का निरोध कर दो, मन को रोक दो। तो भगवान ने कहा तुमसे मन रुकेगा नहीं, मैं ही तुम्हारे मन में आता हूं, फिर इसको क्या करोगे पकड़ के। तो भगवान ही मन में आ जाते हैं, क्योंकि वैसे भगवत गीता में मन को भगवान की विभूति का, इंद्रियाश्चा इंद्रियाणा मनश्चास्मी, इंद्रियों में मन में हूं, तो जो भगवान की विभूति है वो भगवान में ही अटकती है और कहीं नहीं अटकती। मन कहीं भी जाएगा सदा स्थिर नहीं रहेगा, आज पुत्र में स्थिर है कल पुत्र से हट के चला जाएगा, आज स्त्री में है तो कल हटा जाएगा चला जाएगा, आज धन में है तो कल चला जाएगा और किसी में। मन एक जगह स्थिर होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका है उसमें स्थिर होगा, भगवान का मन है ही भगवान की विभूति, तो वहां जाके स्थिर होगा और कहीं टिकेगा नहीं। स्थिर होने का मतलब जहां जाने के बाद वापस कभी नहीं आए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में एक ही विशेष आदेश दिया है कि मई एव मन आदस्त्व, तेरा मन लाकर बनाओ जिसके अंदर मुझे बिठा दो, तुम्हारे मन को मेरे लाकर में रख दो। क्योंकि तुम्हारे पास रहेगा तुम इसको संभाल नहीं पाओगे। हाँ, ये इधर उधर भटकता रहेगा। तो मन मन आदर्श तो मई बुद्धि में निवेश है। बुद्धि में मुझे निवास कराओ, तेरी बुद्धि में मैं रहूं और तेरा मन मेरे पास डिपॉजिट कर दो, क्योंकि तुम्हारे से तो ये आज नहीं तो कल तुम्हारे को झंझट में डालेगा ही डालेगा। कि कोयले का व्यापारी है तो आज नहीं तो कल हाथ काले होंगे ही होंगे। ते मन तेरे पास रहेगा तो तेरे को आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं डुबाएगा ही डुबाएगा। इसका काम ही ये है, इसलिए मेरे पास रख दो। भगवान ने मांगा सिर्फ मन है सबसे, इसलिए भगवान वसुदेव के मन में ही प्रवेश हुए। और जिसमें के मन में भगवान प्रवेश होते हैं वो प्रकाशित हो जाता। उसका वो वसुदेव तो इतना तेजस्वी हो गया, इतना उनके अंदर से प्रकाश निकलने लगा कि लोग उसको देखने की साहस नहीं कर पा रहे। तो अगर भगवान अपनी इच्छा से किसी भक्त के मन में प्रवेश होते, बोला किसके मन में प्रवेश होते, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। जब तीनों गुणों से जीव ऊपर उठ जाता है, विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, तो उस स्थिति का नाम है वसुदेव। विशुद्ध वसुदेव शब्दमते, विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं। और जब वसुदेव की स्थिति जीव की होती है तो भगवान उसके मन में प्रविष्ट होते हैं, फिर भगवान उसके मन में अवतरित होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद कहा करते थे, जन्माष्टमी तो आप हर वर्ष मनाते हो, ये तो जन्माष्टमी नंद और यशोदा वसुदेव और देवकी के घर में भगवान के प्रकट्य किए। तुम्हारे को जन्माष्टमी का असली आनंद उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम्हारे मन में भगवान अवतरित होगा। जब तक आपके अपने मन में भगवान का अवतार नहीं हुआ है, तब तक आपको भगवान के अवतार के आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसका अर्थ है कि भक्त के विशुद्ध सत्व के स्तर पे आने के ऊपर भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, उसके मन में भगवान आके प्रवेश होते हैं, वो स्थिति प्राप्त होती है। अब कहा जाए कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठे, तो उसका एक ही साधन बताया है, अविभिचारेण भक्ति योगेन सुगुणान समतयते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग से तीनों गुणों से ऊपर उठ के अपने ब्रह्म के अस्तित्व को जानकर और पराभक्ति को प्राप्त करता है। मतलब मुक्ति के बाद असल में भक्ति शुरू होती है। विमुक्ति का मतलब मुक्ति के बाद भक्ति, तो भक्ति शुरू ही असल में भक्ति मुक्ति के बाद होती है। तो मुक्ति के बाद जो भक्ति शुरू होती है उसमें भगवान भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, मन में आविष्ट हो जाते हैं, वो स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। तब उसको बाहर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके हृदय में भगवान निरंतर लीला करते रहते हैं। तो यहां अगर किसी के, तो फिर उसका क्या कहना जिसके मन में भगवान प्रकट हो गए हैं। और अथवा अब दूसरा, ये अवतार काल की बात है, किसी के हृदय में आ जाए, अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनको उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। ये किसका है विशेषण? भगवान के चरण कमलों का। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो दास जो होता है उसका चिंतन भगवान के चरणों का होता है। दास्य भक्ति में भगवान के चरण कमलों का चिंतन होता है, वात्सल्य भक्ति में भगवान के मुख का चिंतन होता है। भगवान के कमल नयन भगवान के मुख का चिंतन होता है। मां बच्चे के मुख में आसक्त होती है, तो क्योंकि हमारा स्वरूप ऐसा है तो भगवान के चरणों का जो चरणों को क्या कहा है, तव पाद पोते न महत कृतेन भगवान के चरणों को शंकर, ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदि देवता कहते हैं। ये नौका है, नाव है, जो भवसागर पार करने के लिए भागवत पुरुष भक्तों ने बनाई है। लेकिन ये महात्मा इतने दयालु हैं कि स्वयं पार करके नौका को पीछे छोड़ के जाते हैं कि दूसरे भी पार कर लें। बोला वो कौन सी नौका है? बोला भक्ति की नौका है, जिसमें भगवान चरण के चरण कमलों का सदैव ध्यान बना रहता है। तो करना क्या चाहिए? भगवान का दर्शन करते समय चरण कमलों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। एक तो टेढ़ा है, एक पांव जो है वो टेढ़ा रखा हुआ है, ये भगवान के चरण कमल टेढ़े हैं, और तलवे बहुत लाल लाल होते हैं, और फिर पायल पायल होती है, और उसके ऊपर फूल भी सजा देते हैं, और भगवान के अंगूठे के ऊपर नख चंद्र के पास में भक्त लोग चंदन के साथ तुलसी दल लगा देते हैं, और भी जो बहुत बड़े भगवान के भागवत भक्त है वो भगवान के चरणों में जो चिन्ह है उनका स्मरण को बना रहता है। जव है एक, और जो भगवान के हैं चरण में जव का ध्यान करता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, घर भरा रहेगा, सदा भंडार ही भरे रहते हैं। हाँ, जो अंकुश का चिंतन करेगा उसके मन को अंकुश लग जाएगा। सब चीजें भगवान के चरण चरण में चिन्ह है उसका ध्यान करते हैं। ये मन रूपी मस्त हाथी जो है, इसको मन रूपी मस्त हाथी को भगवान के चरण में अंकुश है, वज्र का वज्र नाभ भगवान के चरण में वज्र के स्थान पे है। तो वज्र तो हमारे सारी माया के बंधनों को काटने के लिए वज्र है उधर। तो ये भगवान के चरण के का चिंतन करना, अथवा ये नौका वो नहीं है जिसमें चढ़ना है, इसको केवल चिंतन मात्र से ही। तो यहां जो शब्द लिखा है, उन भक्तों का क्या कहना जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं। पर चरण कमल कैसे है? जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं, वो क्या है? सुख, यहां शब्द जो सब है, नित्य आत्म सुख अनुभूति कराने वाले, आनंदाम बुद्धिवर्तन वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ये तो आनंद के सागर की वृद्धि होती है, इसमें कोई कमी नहीं होती है। दूसरा क्या काम करते हैं चरण कमल? बोला दूसरा काम करते हैं जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं, जो माया को हटा देते हैं, और नित्य आनंद जो भगवान का स्वरूप है उसका रसवाद आस्वादन कराते हैं, उन भक्तों का क्या कहना? तो ये क्या है, ये तुलना की गई है कि जब अघासुर एक बार केवल चिंतन किया तो उसको अगर भगवान ने अपने धाम में निवास दे दिया, सारूप्य मुक्ति दे दी, तो जिनके हृदय में अवतार काल में भगवान मन में प्रवेश होते हैं, अथवा जिसके मन में भगवान का अवतार हो गया, या जो निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, निरंतर आनंद प्राप्त करते हैं, माया से मुक्त होते हैं, उनका क्या कहना? वो तो जीते जी मुक्त है, उनको मरने के बाद की मुक्ति की जरूरत नहीं है, वो नित्य मुक्त है, जीवित जीवन मुक्त है। तो अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य को पढ़ते हैं। यहां भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि बताई गई है। तो भगवान की कृपा करने की विधि को भगवान चरण कमलों की बात को श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का ये 39वां श्लोक है, जो सनत कुमार, सनक आदि कुमार चार भाई पृथु महाराज को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। यत पाद पंकज विलास पलास विलास भक्त्या कर्माश्य भज वासुदेव। पूरा श्लोक न लिख के प्रभुपाद ने सिर्फ दो लाइन लिख, एक लाइन लिखी है, यत पाद पंकज प्लाश विलास भक्त्या भक्त्या। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है कि तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं योगी, एक होते हैं भक्त। तो ज्ञानी, योगी, कर्मी, इनके कर्म आशा कभी नाश नहीं होती है। कर्म आशा का मतलब कर्मों के बंधन के फंद जो माया के कारण वो नहीं होते। केवल भक्ति में वासुदेव की भक्ति में भगवान के चरण कोमल, यतपाद पंकज, भगवान के चरण कमल। पिलास विलास, पिलास कहते हैं जो जो कपो जो जो नए नए पत्ते निकलते हैं कपोल, बड़े मुलायम होते हैं, उसमें विलास करे भक्ति के द्वारा उनका चिंतन करता है तो एकदम भगवान वासुदेव के चरण कमलों का चिंतन सारे माया के मोह से कर्म आशय से मुक्त कर देता है, जबकि और कोई साधन ऐसा कर नहीं सकता। तो साधन क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त करने का साधन क्या है, कृपा कृष्ण का चिंतन करने मात्र से उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये भी बताया गया है कि कृष्ण के चरण कमल सदैव भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं, भगवान के चरण कमल सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। कौन भक्त भगवान का आप जानते हैं सबसे महान, राधा रानी, उसके चरणों में उनके हृदय में सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल स्थित रहते हैं, उस स्तर की बात है ये। उस दिन बताया था आपको भगवान के गरम दूध की लीला, बताया था कहीं, एक स्थान है सिद्धपुर जहां बिंदु सरोवर है, जहां कपिल देव का जन्म हुआ, जहां देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हुआ, कर्दम की तपोस्थली है, सरस्वती का तट है और भगवान के आंसुओं से बना हुआ बिंदु सरोवर है। उस सरोवर की महिमा गर्ग संहिता में लिखा है कि जो एक बार उसमें स्नान करेगा वो तत्काल भगवान श्री कृष्ण का संयोग हो जाएगा, कभी वियोग नहीं रह सकता है। जब राधा रानी ने ये सुना तो सारे गोपियों के संग में वो बिंदु सरोवर चली गई नहाने को, और उस समय ग्रहण का समय हो गया था और महाभारत युद्ध होने के बाद कुरुक्षेत्र तो सारा और रक्त हड्डी मंस मार साथ चारों ओर से फैला हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी सब यदुवंशी रानियों के साथ इसी क्षेत्र में आए थे सिद्धपुर में। तो बिंदु सरोवर अहमदाबाद से 112 किलोमीटर पालनपुर के हाईवे पे है। अभी हम गए थे 15 दिन पहले भक्तों के संग, हम नहाया, अभी हम गए उसके अंदर नहाने के लिए। छोटा समुद्र है और छोटा जो सरोवर, एक तो बड़ा पास में पड़ा है लेकिन उसमें पानी नहीं है, असली समुद्र छोटा है सरोवर, और उसको मात्र गया कहते हैं क्योंकि कपिल देव ने वहां देवहूति को उपदेश दिया था, इसलिए परशुराम अपनी माता रेणुका का पिंड दान करने वहां आया था, तो उसको मात्र गया बोलते हैं, माताओं के तर्पण करने के लिए लोग वहां जाते हैं। और बिंदु सरोवर में राधा रानी जैसे स्नान करने लगी, गोपियां चारों ओर खड़ी थी, तो उसी वक्त श्री कृष्ण का कुछ यदुवंशी जाने लगे तो गोपियों ने अंदर जाने नहीं दिया, बोला कौन है अंदर, बोला वृष भानु दुलारी नहा रही है। भगवान को यह समाचार मिला, भगवान ने कहा तत्काल राधा रानी से मिलना है, अभी राधा रानी नहा ही रही रही है तब तक संदेश आया कि कृष्ण मिलना चाहते हैं। बोला वाह सच, बिंदु सरोवर एक बार नहा ले कोई तो भगवान की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। तो भगवान से जब राधा रानी का मिलन हुआ है तो सत्यभामा आदि कहते हैं हम सुंदर हैं, लेकिन राधा रानी की सुंदरता और भगवान के जो उन्होंने जो जो आसन बनाया, जिसके ऊपर भगवान को बिठाया, जिस प्रेम से भगवान की आराधना की, सब देखे, राधा का अर्थ ही आराधना है, जो भगवान की निरंतर आराधना करती है। अति प्रसन्न हुए सब देख के, आश्चर्यचकित हुए सब रानियों ने, राधा रानी के चारों ओर बैठ गई, तो राधा रानी ने सबको आश्वासन देते हुए कहा जैसे एक चंद्रमा, चकोर अनेक होते हैं लेकिन चंद्रमा एक होता है, तो ये कृष्ण चंद्र अनेक एक है और हम सब इससे प्रेम करने वाले अनेक है, तो सबको ऐसे आस्वादन दिया। और फिर रुक्मणी तो राधा रानी को बड़ा, भगवान श्री कृष्ण सबको व्यवस्था किया, वो तो आए थे द्वारकाधीश, ये तो बेचारे ग्वालने गई थी गोपियां, तो भगवान ने बड़ी व्यवस्था की। रुक्मणी देवी उनको राधा रानी के पास बैठी, रात को उनको विश्राम करा के फिर कृष्ण के पास आई, तो कृष्ण सो नहीं रहे थे, पूछा आप क्यों जाग रहे हैं द्वारकाधीश, बोला राधा रानी को नींद नहीं आती है मैं कैसे सोऊंगा, बोला मैं तो सुला के आई हूं, बोले नहीं नहीं वो गर्म दूध पीती है गाय का तब सोती है, अरे गर्म दूध तो मुझे देना भूल गया, तो भागती हुई गई है रुक्मणी, तत्काल में गर्म दूध कराया है और सोने के बर्तन में लिया है और जाके राधा रानी को दिया है। तो राधा रानी जाग रही थी, दे दिया कि आपने दिया लिया नहीं है, आप विश्वान दुलारी, ये कीर्ति कुमारी आपके लिए गर्म दूध लाई हूं। दूध दे के जैसे वापस आके रुक्मणी भगवान के चरण संवाहन के लिए हाथ लगाया तो श्री कृष्ण के चरण के ऊपर फम्बूते जले हुए। अरे आप कहीं गए नहीं, आपके चरण कैसे जल गए? हे भीष्मक पुत्री रुक्मणी, आपने बहुत गर्म दूध दिया था राधा रानी को, उनके हृदय में मेरे चरण सदा रहते हैं और इसकी वजह से मेरे चरण जल गए हैं। इसको बोलते हैं भगवान की गर्म दूध की लीला, राधा रानी के चरण जल गए हैं। तो भक्तों के हृदय में सदा भगवान के चरण रहते हैं। वैसे जब श्री रामचंद्र राज तिलक के बाद सबको विदा कर रहे थे तो कहा अब तुम तो वापस जाओ, विभीषण तुम्हारे को लंका का राजपद दिया, ऐ सुग्रीव जाओ तुम्हारे को किष्कंधा का राजपद दिया। तो हनुमान बैठा था, बैठा बड़ा बोला भगवान इन सबको एक पद दिया, मेरे को दो पद चाहिए। बोला तुम तो निष्काम भक्त हो, सदा सेवा में, तुम्हें कौन से दो पद चाहिए? बोला ओ दोनों आपके चरण कमल मेरे को दे दो, ये दो पद मेरे को हृदय में विराजमान करने के लिए चाहिए। असल पद तो ये है कि आपके चरण कमल दोनों मुझे प्राप्त हो जाएं मेरे हृदय में सदा। तो दास सदा भगवान के चरणों को ही हृदय में रखता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल रहते हैं। ये जो बात लिखी है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कम से कम अभ्यास करा करो। जब आओ भगवान का दर्शन करने मंदिर में तो राधा गोविंद गौर निताय के चरणों को जरा ध्यान से देखा करो और उनको हृदय में ऐसे आंख बंद करके देखो कि हृदय में चरण दिखते हैं कि नहीं दिखते। कई सालों से ये अभ्यास कर रहे हैं कि टेढ़ा खड़ा हुआ गोविंद उसके चरण वो दिखने चाहिए, वो लाल लाल तलवे दिखने चाहिए और जो पायल है वो दिखनी चाहिए और अंगूठे के ऊपर लगा हुआ तुलसी दल और चंदन दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। और देखते देखते कभी कभी तो उसकी सुगंध आने लगेगी अगर आपका ध्यान इतना पक्का हो गया तो, क्योंकि असल में भगवान तो चिन्मय है, ऐसा नहीं है कि भगवान एक जगह है सब जगह नहीं है, वो तो सब जगह सब समय है, लेकिन हमारे चिंतन में अभी कमी है। नहीं तो वो तो साक्षात दर्शन भी कर लेना चाहिए, ध्यान में जरूर रखना चाहिए। भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं भगवान, भक्त हृदय स्थित प्रभुपाद जी, भगवान भक्त हृदय स्थित अघासुर के बारे में यह तर्क किया जा सकता है कि वो भक्त न था। इसका उत्तर यह है कि उसने क्षण भर भक्ति पूर्वक कृष्ण का चिंतन किया। भक्त्या अहम एकया ग्रहा, ये 11वें स्कंद में, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं मुझे प्राप्त किया जा सकता है, बिना भक्ति के कोई कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब कोई कृष्ण का चिंतन करता है तो उसमें निश्चित रूप से भक्ति होती है। यद्यपि अघासुर का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था किंतु क्षण भर उनके कृष्ण का चिंतन भक्ति पूर्व किया और कृष्ण तथा उनके संगियों के ने अघासुर के मुख में भीतर क्रीड़ा करनी चाही। इसी तरह पूतना कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी किंतु कृष्ण ने उसे माता का आदर दिया क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता से, को थोड़ी सी भी भगवत भक्ति का एक क्षण मात्र भी कर ले तो बड़े बड़े से बड़े महाभयंकर भय से बच जाता है। विशेषतया जब कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और जो कोई व्यक्ति कृष्ण के इन विविध अवतारों का रामादिमूर्ति शुकला कलानीयमेन तिष्ठन चिंतन करता है, विशेषतया उनके आदि रूप कृष्ण का, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अनेक दृष्टांत हैं जिसमें अघासुर भी है। जिसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की। अतएव विधि ये है, सततम कीर्तनयन्तो माम यततंश्च निर्दृढ़ व्रताः। विधि ये है कि अतः भक्त लोग सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादम अनंत रूपम, जब हम कृष्ण का उल्लेख करते हैं तो हम उनके सारे अवतारों तथा कृष्ण गोविंद नारायण विष्णु चैतन्य कृष्ण बलराम तथा श्याम सुंदर का उल्लेख करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, कुछ अवतारों का नाम लिख रहे हैं और कुछ अपने स्थापित किए हुए ठाकुर जी का नाम लिख रहे हैं। एकदम कृष्ण बलराम लिख के श्याम सुंदर लिखा तो प्रभुपाद जी के लेखनी में उस वक्त वृंदावन का स्मरण आया। और ये जो प्रभुपाद जी का अनुवाद है, ये तो वृंदावन के अंदर ही 77 में अनुवाद का ये टुकड़ा किया, 14वें अध्याय तक ही किया है ना, 14वें अध्याय तक ही प्रभुपाद जी का अनुवाद है। तो ये 12वां अध्याय तो वृंदावन में प्रभुपाद के चिंतन में क्या है, कृष्ण बलराम श्याम सुंदर, ये अपने ठाकुर जी का एकदम स्मरण करके लिख दिया है। इसका अर्थ क्या लिखा है कि अवतार काल के अवतार और जो मंदिरों में हमने विग्रह स्थापित किए हैं, ये भी भगवान का अर्चा विग्रह अवतार है और उस अवतार को ऐसे चिंतन किया है। कौलेकर जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है उसे विमुक्ति, जो भगवान के निजी संगी की तौर, मतलब भगवान का पार्षद, पर विशेष मुक्ति होती है, प्राप्त होना होती है, प्राप्त होनी चाहिए। भले ही वो वृंदावन में न हो, कम से कम वैकुंठ लोक में तो हो, ये सारूप्य मुक्ति कहलाती है। अब अंत में ये प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती के पाद की टीका इस श्लोक की में ये लिखा है कि ये कहा जा सकता है कि अघासुर चिंतन तो कृष्ण का कर रहा था, तो सिद्धांत तो ये है कि जिसका चिंतन करते वही प्राप्त हो, अंत गति मति सो गति, नेम तो ये है, तो उसको कृष्ण की प्राप्ति होना चाहिए ना, गोलाक की, तो गोलोक की क्यों नहीं हुई, कारण क्या है भाई, जिसका ध्यान करेंगे वही जाएंगे ना। प्रभुपाद ने सब और भी नाम लिख दिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पहले तो रूप गोस्वामी के भक्ति के जो 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 लक्षण है उसमें अनुकूलीन शब्द है, तो भक्ति पूर्वक देखा, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया, लेकिन उसका उद्देश्य अनुकूल नहीं था, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं आए थे, भगवान ने इसका सुख लिया, भगवान ने सुख लिया, भगवान को आनंद दिया, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान को आनंद देना नहीं था, मारना था इसलिए। और दूसरा कारण दिया कि ये रागानु का भक्त नहीं था, गोलोक में तो केवल रागानु का भक्तों का ही प्रवेश है जो भगवान के किसी भक्त के अनुगत होते, बाकी भक्त जो प्रेम प्राप्त भी करें तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसलिए अघासुर को भगवान ने वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति दी, वो गोलोक वृंदावन न देकर वैकुंठ इसलिए दिया, ये उसका कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। वैसे भी गोलोक धाम जाने के लिए रागनों का भक्ति एक ही साधन है, अन्य कोई भी साधन ब्रह्म ज्योति से लेकर वैकुंठ तक ले जाने में समर्थ है, इससे आगे का साधन अनुगत होना पड़ेगा ब्रज के भक्तों के, तभी जाके वो प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य दो तीन भगवत गीता के भागवत के श्लोकों के माध्यम से हमें क्या अभ्यास करना है उसकी हमको प्रेरणा दी है कि भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, एकमात्र थोड़ा भी भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा, सदा भगवान के कीर्तन करने का नियम बनाना चाहिए, तो निरंतर भगवान के कीर्तन में नाम कीर्तन आता है, भागवत कीर्तन आता है, गीता का पढ़ना भागवत का पढ़ना ये भी कीर्तन ही है, तो घर में कम से कम घंटा एक शास्त्र को पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम जपने में कुछ समय लगाना चाहिए, तो ऐसे अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ हाँ, विवाह पंचमी है, हाँ।
का ब्याह है यार राम जी का। हाँ जी,
रामचंद्र जी का।
और क्या,
तो चलो चलते हैं उधर को, मिथिला 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 से नहीं, वहाँ जनकपुर में।
जनकपुर तो है, ओरछा है यहाँ, जो भगवान राम आए थे यहाँ पैदल चल के अयोध्या से।
अच्छा, विवाह करने के लिए?
नहीं यार, रहने के लिए। एक राजा की रानी थी।
अरे भैया, राम जी विवाह करे तो भले करे, आपने एक किया वो बहुत हुए। राम जी ने एक इसलिए किया कि आप ज्यादा सोचना मत, और एक में कितना संकट उठाना पड़ा राम जी को। एक महात्मा था, वो नरसिंह था, नरसिंह केवल नरसिंह की उपासना, बहुत से ऐसे भक्त है, श्रीधर स्वामी नरसिंह का उपासक था। तो वो तिलक रामानंदी लगाता था, सब रामानंद जी के, तुम राम कृष्ण का उपासना नहीं करते, नरसिंह का क्यों करते? बोला ये सब गृहस्थी है, इसका नहीं करना है मुझे, ये दाढ़ी वाला है ना बाबा जी नरसिंह। और सारा दिन गुराता रहता है, लक्ष्मी भी निकट नहीं आई, दूर से भाग के चली गई कि इसका मूड ठीक नहीं है। ये गुराते रहते हैं ना सारा दिन, कोई किसी को निकट नहीं आने से, लक्ष्मी भाग के चली गई, इसलिए हम बाबा नरसिंह के उपासक है और सारा दिन गुराते रहते, किसी को नजदीक ही नहीं आने देते।
महाभारत युद्ध कैसे करता होगा?
हमें संतों के मुख से सुना है भाई, बड़ा मजेदार शाप है।
लेकिन हमको लगता है शकुनी लड़ता नहीं होगा ऐसे, दुर्योधन के साथ साइड साइड से देखना होगा, उसको तो समय समय पर
तो दूर रखा, नहीं तो और उपद्रव मचाता। अरे कृष्णा, तो असल में बहुत आश्चर्य लगता है कि भगवान विश्वामित्र के संग पैदल चल के विवाह करने गए हैं, किशोरी जी सीता के पास, और सीता अयोनिज है, किसी योनि से उत्पन्न नहीं है, इसलिए उसको विदेही कहते हैं। और ये जनक जी जो सीता जी के पिता है, इनका नाम है क्षीरध्वज, जनक उपाधि है, पहला जनक है निमि महाराज, ये जनक निमि महाराज के वंश के हैं। निमि महाराज सूर्य वंश में हुए हैं, जिनका वशिष्ठ जी गुरु थे, और गुरु जी चले गए थे इंद्र का यज्ञ कराने, और इन्होंने दूसरे पुरोहित से यज्ञ करा दिया, वशिष्ठ जी नाराज हो गए, तो वशिष्ठ ने कहा तुम्हारा प्राण निकल, सारा शरीर छूट जाए, तुम दूसरे पुरोहित से यज्ञ कराया। तो निमि ने कहा महाराज आप भी देवताओं को पूजा कराने चले गए, आपका भी शरीर, दोनों का शरीर छूट गया। तो वशिष्ठ जी तो दोबारा मित्र और वरुण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन निमि महाराज दोबारा शरीर लेने को तैयार नहीं थे, तो उसके शरीर का मंथन हुआ, इसलिए उनकी राजधानी का नाम मिथिला हुआ, और उनका प्रकट या मंथन से हुआ, इसलिए उसको विदेहराज कहते हैं, वो देह में रहना नहीं चाहता है, और उनका प्रकट ऐसे मंथन से हुआ तो उसको जनक कहते हैं। तो पहला निमि जनक, उनकी राजधानी मिथिला, जनक मिथिला और विदेहराज, और 21वीं या 22वीं पीढ़ी में सीता माता के पिता जनक है, इसका नाम है क्षीरध्वज, इनके भाई का नाम है कुशध्वज। हाँ, ये जहां सीतामढ़ी अभी है, बिहार में जहां सीतामढ़ी है, ये क्षेत्र मिथिला का है, यहां हल चला रहे थे यज्ञ के लिए। तो हर की जो हराई नीचे होती है ना लोहे की, उसको सीत कहते हैं, तो उसके लगने से मटके से निकली, तो उसका नाम हो गया सीता, सीता नाम हुआ उस सीत के कारण, और विदेही नाम हुआ कि जनक की बेटी के रूप में रही, तो विदेही हो गई, और जनक का नाम जनक हो गया। और एक दिन महाराज जनक को उनके कुछ मंत्रियों ने काम कहा कि आज सफाई करते हुए ये जो भारी धनुष जिसकी हम पूजा करते हैं ना, ये किशोरी जी ऊपर उठा के इसके नीचे पूजा की, और किसी जगह लिखा है और अन्य स्थानों में कि कोई पुष्प उतारना था तो हाथ पहुंच नहीं रहा था, वो धनुष लेकर और उसका टांग अटका के उसको नीचे उतारा और उस पुष्प को निकाला। ये जो समाचार मिला महाराज जनक को, उन्हें बोला तू पागल तो नहीं हो गया, इसको पागल खाने जा, उसको तो 50 लोग को नहीं 500 लोग धक्का देके धनुष को लाते, ये छोटी 8 वर्ष की बच्ची ने कैसे उठाया होगा। दूसरा आया, तीसरा आया, बोला सारे पागल हो गए क्या, जाके देखें तो धनुष वाकई ऊपर उठाया हुआ। जनक ने उस दिन विचार किया महाराज ने कि अब ये सामान्य नहीं है कन्या, इसका विवाह उससे कराएंगे जो इस धनुष को उठा सकेगा। तो उस धनुष यज्ञ के लिए वाल्मीकि जी की रामायण में स्वयंवर का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि जी की रामायण में स्वयंवर का वर्णन पहले हो गया जिसमें बहुत से लोग आए और निष्फल होके गए, लेकिन जब विश्वामित्र के संग राम जी आए तो विश्वामित्र का यज्ञ जब संपन्न हो गया तो विश्वामित्र ने कहा परितुष्ट हुआ, मैं संतुष्ट हो गया। पहले तारका को मारा तो कहा मैं संतुष्ट हो गया, तब तो सब अस्त्र शस्त्र दे दिए। यज्ञ के बाद बोला अब मैं इनको अस्त्र शस्त्र दे दिए, विद्या तो वशिष्ठ जी ने दे दी, अस्त्र शस्त्र मैंने दे दिए, लेकिन इनके जीवन में माधुर्य तो भरना चाहिए, अब इनका विवाह कराना चाहिए। वैसे रसिक ये कहते हैं कि विश्वामित्र को जब मना कर दी दशरथ जी ने कि नहीं दे पा सकता हूं राम जी आपको, तो वशिष्ठ जी ने जाके कहा, उन्होंने फिर विश्वामित्र ने कहा मैं जानता हूं कौन है राम, ये आपका गुरु वशिष्ठ जानता है। तो वशिष्ठ ने कहा तो मेरे ऊपर दायित्व आ गया, उन्होंने कान में जाके कहा महाराज ये विश्वामित्र इस वक्त तपोनिष्ठ ऋषि, ये चाहे तो पूरा ब्रह्मांड भस्म कर सकता है, लेकिन जब यज्ञ में बैठता है ना तब वो क्रोध नहीं कर सकता। वैसे ये राम जी का हित करना चाहता है, अस्त्र शस्त्र देना चाहता है, और थोड़ी देर पहले इनके आने से हम यहां घोष्टी कर लेते ना कि हमारे बच्चों का विवाह कहां करेंगे, ये विवाह भी कराया है, ये विवाह भी कराएगा। अब ये सुनते ही महाराज दशरथ का काया पलट गई, बोला एक राम नहीं इसके साथ लक्ष्मण ही ले जाओ, एक के बजाय दो दिए। और माताओं को तो ये पहले से याद था, किसी ने बताया था कि जो विश्वामित्र ले जाएगा तभी इनका विवाह होगा, ऐसा कोई उनको बताया हुआ था, इसलिए उन्होंने भी रोका नहीं। तो यहां कहते संत की वाचन सुन के लोगों की काया पलट जाती है, बड़े महाराज का भी मन बदल गया और राम जी को दे दिया। अब राम जी का जब यज्ञ विश्वामित्र का संपन्न हो गया तो विश्वामित्र का इसको ऐसे तो नहीं कह सकता चलो तेरा विवाह कराना है, तो लज्जित हो जाएगा। बहुत बड़ा भारी धनुष रखा हुआ है, आप उसको देखना चाहोगे? अब तो कोतवल बच्चों ने कहा हाँ जरूर देखेंगे, तो चल के विश्वामित्र के संग में आए हैं। बहुत असल में ये पूरा क्षेत्र को कभी घूम के देखना चाहिए। अयोध्या से ये निकले कहाँ से हैं? अयोध्या से निकले हैं, अयोध्या से निकल के जाना चाहिए जनकपुर तक। तो रास्ते में पहले तो सरयू आएगी, और सरयू को पार करने के बाद आएगा अंगदेश, जहां शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था अनंग, और उसके बाद आएगा ताड़का जहां वध हुआ वो बड़ा वन ताड़का वाला वन, और उसके बाद आएगा सिद्धपुर, बक्सर को सिद्धपुर कहते हैं अभी, सिद्धपुर सिद्ध आश्रम, और सिद्ध आश्रम के बाद फिर यहां से जब निकलेंगे तो विश्वामित्र की अपनी राजधानी आएगी, उसके बाद गंगा को पार करना पड़ेगा, तब गंगा अवतार की कथा बताइए, और गंगा को पार करने के बाद जहां अहल्या का उद्धार हुआ गौतम ऋषि का आश्रम आएगा, गौतम ऋषि के आश्रम के बाद आएगा जनकपुर, और जनकपुर में वो जगह जो अभी नेपाल में जहां विवाह हुआ है वो स्थल आएगा। तो ये पूरा क्षेत्र जो है भ्रमण करके देखना चाहिए, ये पूरे क्षेत्र में कैसे भगवान गए हैं पैदल चल के। तो जैसे भी वो अहल्या का उद्धार भी किया, और भगवान जब वहां पहुंचे हैं तो धनुष को जब लाया गया है तो राम जी ने देखने की इच्छा की है, बड़ी पेटी में रखा हुआ धनुष 500 लोग धक्का दे के लाए, तो राम जी ने पूछा मैं इसको उठा सकता हूं? तो विश्वामित्र ने जनक जी ने कहा बोला ठीक है उठा लीजिए, उठाया प्रत्यंजा चढ़ाया तो धनुष टूट गया। ये धनुष कहां से आया था? ये शंकर जी का धनुष। ये भी नारद और इंद्र के बीच में एक बार लड़ाई हो गई, आपस में बातें करके दोनों, वो बोलता है हमारा, नारद बोलता है हमारा भगवान नारायण है, बोला नहीं नहीं इंद्र बोलता है हमारा शंकर जी महादेव है, बोला दोनों को लड़ा के देखते हैं। ऐसे कैसे लड़ा के देखेंगे? वो लड़ा के देखेंगे तो विश्वकर्मा को एक बड़ा धनुष बना दो, तो शंकर जी का धनुष बन गया। तो जब विष्णु को नारद ने कहा महाराज मैं कह के आया हूं आप तो चलिए, बोला नहीं हम तो मेरा भक्त है उसे कह, बोला हमारे को देखने की इच्छा है तो देखने की इच्छा चलो। तब कहा तो आप विष्णु नारायण आप अपना धनुष तो नहीं ले सकते हाथ में, ये जो सारंग नहीं ये जो दूसरा ऐसा ही धनुष बनेगा, दूसरा वैसा धनुष बनाया। विश्वामित्र उस धनुष से लड़ाई हुई तो शिव जी मूर्छित हो गए, तो शिव जी ने कहा ये धनुष मुझे रखना ही नहीं है। उन्होंने ये धनुष दे दिया था हमारे देवव्रत महाराज को, उसके पीढ़ी में होता होता हमारे पास ये आया है, जनक जी ने कहा। और भगवान विष्णु वाला धनुष परशुराम के पास चला गया, वो फिर परशुराम के हाथ में था, जो राम जी को देता है इसके ऊपर पतंजलि चला के दिखाओ। तो ये दोनों धनुष ऐसे घूम के आगे आए हैं। तो फिर धनुष को जब उठाया तो बड़े आनंदित हो गए जनक जी के, बड़ा आए और वो धनुष का इतनी ध्वनि हुई सब मूर्छित हो गए सिवाय विश्वामित्र जनक जी के, बाकी सब तो मूर्छित हो गए। उसके इतना आवाज हुआ, आज भी जब धनुष कोटी जाते हैं तो धनुष का एक टुकड़ा 15 किलोमीटर दूर अभी भी गिरा पड़ा हुआ है, और एक तो उस वो तो एक वो तालाब में गिरा हुआ है, तालाब में गिरा हुआ है अभी भी, कहते हैं धनुष इतना बड़ा
पहले दिखता था, भारी दिखना बंद हो गया है 10-12 साल से पहले दिखता था।
तो उसके बाद अब फिर क्या संदेश था, तत्काल संदेश भेजा गया। अब राम जी ने कहा ऐसे तो मैं विवाह नहीं करूंगा, ये तो मेरे पिताजी आएंगे तब बड़ों की आज्ञा से विवाह होता है, ऐसे कोई आधुनिक विवाह थोड़ी है आजकल का, जब चाहो जिसके साथ कहो जब चाहो तब तोड़ दो। तो वे पिताजी का जब आएंगे आज्ञा होगी तब होगा। तो भाई तत्काल जो है संदेश वाहक उधर पहुंच गया, जाने में 4 दिन लगते हैं जनकपुर से अयोध्या, घोड़े पे तेज गया, उधर जाके समाचार दिया, जनक जी बड़े प्रसन्न हो गए और उनको जो उपहार दिया उसने उपहार को तो आदर दिया और वापस दिया कि हम कन्या के घर का लेते नहीं है देते हैं, बड़ा ये मर्यादा सिखाई है। फिर महाराज दशरथ वहां से बारात बना के, अब भारत बना के वहां से निकले हैं, तो उस जमाने में स्त्रियां साथ नहीं लाए थे, गुरुजनों को साथ लिया है, तो रास्ते में लोग कहते हैं दूल्हा कौन सा है, अब दूल्हा तो है नहीं बारात दूल्हा तो पहले ही वहां पहुंच गया है। तो महाराज ने पूछा जाके वशिष्ठ गुरुदेव अब क्या करें, बोला देखो हमारा ये भरत कोई जैसे राम जैसा ही लग रहा है, इसको सजा के दूल्हा बना के ऊपर बिठा देते हैं। और जनक जी कहते हैं बात तो अच्छी है लेकिन जब बड़े हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि शादी गए थे दूल्हा बन के वो और शादी हो गई दूसरे की तो इनको लज्जा आएगी। बोले नहीं, अगर हमारे वचन से मुख से वचन निकला है तो ये भी सत्य होगा, इसका अर्थ है इसको भी शादी करा के लाएंगे, दूल्हा बना ही दो बोला एक नहीं दोनों बना दो। तो भरत अकेला नहीं, उतने साथ शत्रुघ्न तो साथ रहना ही है। अब ये दूल्हे ऊपर बन के बैठ गए, अब कोई पूछ नहीं रहा है कि दूल्हे का और ये समाचार मिला है। तो महाराज जनक उनकी अगवानी करने के लिए आए हैं, उनको बड़ा ठहराया है, फिर तो दोनों ने अपने वंश का वर्णन किया है। और उसके बाद विश्वामित्र बोल उठे कि महाराज देखो सीता का विवाह तो राम से हो रहा है लेकिन आपकी दूसरी बेटी है, इसके लिए लक्ष्मण उपयोगी, आप इसको अपनी कन्या दे दीजिए। और मिला जनक ने कहा हमारा तो सौभाग्य है, सेतु बन रही है, दो निमी वंश में और इक्ष्वाकु वंश में सेतु बन रही है। तब विश्वामित्र ने कहा यह तो बहुत अच्छा है लेकिन आपका भाई विवाह में आया है, ये कुशध्वज, इसकी दो कन्याएं हैं जो श्रुतकृति और मांडवी है, ये भरत और शत्रुघ्न को दे दीजिए। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले दूल्हे बनाए तो शादी भी करा ले, ये सामूहिक विवाह हो गया। और इसके बाद वहां से विदा होके, विदाई के समय बड़ा आनंद उधर हुआ है। जब वापस आए हैं जनकपुर, अभी भी जो जनकपुर देख के आए हैं वहां विवाह मंडप बना हुआ है, 2-4 रुपया टिकट लेते हैं, 10 रुपया क्या उसके अंदर जाके दिखाते हैं, नहीं कुछ पैसा देगा, साधु संतों से नहीं सामान्य व्यक्ति, क्यों बहुत भीड़ होती है। तो वहां जनक जी बैठे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी सुनैना बैठी है, सामने राम और सीता बैठे हुए हैं और गुरु वशिष्ठ जी और जनक महाराज आदि बैठे हैं, वो उधर मूर्तियां बना के रखी है उस मंडप में।
ओरिजिनल जो विवाह मंडप है ना उसका डेवलप नहीं हुआ, विवाह के बाद जो रनिवासी होता है तो रनिवासी का वो मंडप बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जहाँ सिंदूरदान और
नहीं, जो अभी जो बना रखा है उसकी बात कर, हम जो देख के आए हैं वो हमने एक बार गए देखा उसको,
मैं वही कहूँ ना इसलिए हमको मालूम
है। नहीं वो तो और कुछ बहुत सी अंदर की लीला, लेकिन अभी जो बना है प्रसंग जो वहाँ चल रहा है वो ऐसा है। अब वहां से चले हैं वापस तो अयोध्या में बहुत सजाया, उनका स्वागत हुआ है। अब माता कौशल्या कहती है कि मैं आपको मुंह दिखाने में क्या दूं सीता, मैं आपका ये पाला पोषा हुआ ये सांवला सलोना मेरा राम, आपको मुंह दिखाई में देती हूं, अब इसके साथ प्रेम से रहो। तब केकई ने कहा कि मैं बड़ी दुखी थी कि हमारे चार सुंदर पुत्रों को चार कन्याएं सुंदर कहां से मिलेंगी, लेकिन आज तो चारों बड़ी सुंदर है और सीता आप आपका तो तुलना की नहीं जा सकती, आपको क्या दूं, मैंने बहुत सुंदर कनक भवन बनाया था, आज मुंह दिखाई मैं ये कनक भवन आपको देती हूं, इसमें आप सुख से रहिए। अब रह गई सुमित्रा, उसने कहा कि अब सबने सब कुछ दिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक मेरा बेटा था वो तो पहले ही राम को दिया, लेकिन आज तक वो मेरे को माँ कहता है, आज से मैं उससे अपने माँ होने का अधिकार उठा लेती हूँ, आज मैंने लक्ष्मण सीता आपको मुंह दिखाई में दे दिया। तो ऐसे ये बड़ा अद्भुत चरित्र है रामायण, तो बड़ी करुणा का शास्त्र, ये करुणामय शास्त्र है, ये जो लिखा है जब वाल्मीकि जी ने तो सीता जी के उनके आश्रम में रही है उसको देख के जो लिखा है, तो सीता करुणा का रस बहुत ज्यादा इसमें भरा हुआ है। ये अपने आप में वाल्मीकि जी का तो हम थोड़ा सा देखा है, ज्यादा तो हमको गाना नहीं आता है, जो यहां चलता है उसका हमारे को अभ्यास नहीं है, लेकिन कथा बड़ी अद्भुत आनंदमय है। तो सीताराम तो नित्य प्रिय प्रियसी हैं, उनका तो कहीं वियोग नहीं है, लेकिन धरती के ऊपर उनका प्रकट्य ऐसे हुआ था। हरे कृष्ण, सीताराम लक्ष्मण हनुमान।